अज्ञान के कारण चीज दोलती है, ज्ञान होने पर पता चल जाता है एक है। जब तक इसका अज्ञान रहता है तब तक ये भेद बुद्धि रहती है, इसलिए कहा यत् फलम ओंकारो वेद पर ईशो वा, इसलिए वही प्रत्यगात्मा रूप से कहा जाता है और वही दक्षिणवक्त्र भगवान शंकर परमेश्वर रूप से कहा जाता है। शिव एको ध्येय शिवंकर सर्वम अन्यत् परित्यज्य, ये जो दोनों की एकता है, दोनों का भेद का हट जाना है। अब ओंकार के ज्ञान से ये सारे स्तरों में भेद हटता है। वो परमेश्वर का ये विराट शरीर और हमारा ये शरीर इस विराट शरीर का ही तो एक छोटा सा हिस्सा है। हमको लगता है हम अलग हैं, परंतु सचमुच में अलग हैं क्या? इस विराट शरीर के एक अंग मात्र हैं। जैसे ये हाथ कब तक है? जब तक ये हमारे शरीर का अंग है। इसको काट के अलग कर दो तो फिर ये ईंट पत्थर हो जाएगा, हाथ नहीं रहेगा। इसी प्रकार हमारा शरीर इस सारे ब्रह्मांड का अंग हुआ हुआ ही अपनी सत्ता वाला है, अन्यथा इसकी कोई सत्ता नहीं। तो शरीर हमारा भी परमात्मा के ब्रह्मांड शरीर से एक है। ठीक इसी प्रकार से हमारा मन भी, जो समष्टि मन हिरण्यगर्भ है, उसके साथ एक है। शरीर का देख लो, तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा वजन होगा 100 किलो, रोज कम से कम भोजन पानी 2 किलो तो जाता ही होगा अंदर। जितना जाता है उतना ही गरीब गरीब निकल भी जाता है, नहीं तो फिर वजन बढ़ने लगेगा या घटने लगेगा। 50 दिन में जो बाहर का ब्रह्मांड शरीर का खाना था, पानी था, वो तुम्हारे अंदर गया और जो अभी तुम्हारे अंदर है वो निकल गया। ये वही शरीर है, ये केवल हमारा भ्रम है। शास्त्रकार कहते हैं ठीक जैसे गंगा के किनारे आदमी कहता है ये वही गंगा है जहां मैंने गई साल कुंभ में स्नान किया था। वो गंगा कब से बह करके समुद्र में पहुंच गई, समुद्र में मिल गई, लेकिन वैसा ही पानी है, इसलिए भ्रम बना रहता है ये वही है। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर नई चीज आ रही है, पुरानी निकल रही है, लेकिन एक साथ बदलता नहीं, इसलिए भ्रम बना रहता है। एक हमारे परिचित सज्जन है, बड़ी उनकी पुरानी मोटर हो गई है। हमने कहा भाई तुम्हारी मोटर अब ये बदलोगे नहीं? बोले नहीं बदलेंगे नहीं, ये पिताजी के समय की मोटर है। हमने कहा बहुत साल की मोटर हो गई? बोले हाँ जी, 4 बार तो इसका इंजन बदल चुके और 4 ही बार इसकी बॉडी भी बदल चुके। अब वो इंजन भी पिताजी वाला नहीं है, वो बॉडी भी पिताजी वाली नहीं है पर गाड़ी पिताजी वाली है, क्योंकि इंजन और बॉडी इकट्ठी नहीं बदली ना। ठीक इसी प्रकार से हमारा ये सारा माल इकट्ठा नहीं बदलता, इसलिए हमको लगता रहता है ये वही है। इसी प्रकार हमारा मन, हर आदमी कुछ कहता है, बाँचते हैं, सबसे हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। उससे हमने किसी दूसरे को कहा, हमारे विचार दूसरे में गए, दूसरे के विचार हमारे में आए, लगता रहता ये वही मन है। लेकिन ये भी निरंतर प्रवाह वाला है। कितनी चीजें बचपन के अंदर बड़े महत्व की थी, एक कंचा कांच का टुकड़ा, उसके पीछे हम मरने मारने को तैयार हो जाते थे। ये वही मन है कह रहे हो। अब उस कंचे के लिए जब हमारे बच्चे मरने मारने को तैयार होते हैं तो उनको डांटते हैं, अरे दूसरा कंचा दे देंगे, इसके लिए झगड़ा कर रहे हो इतना। तो ये जो मन है ये भी हिरण्यगर्भ का समष्टि मन का एक अंग है। यहां भी एकता है। और अंततो गत्वा आत्मा और परमात्मा की भी, सच्चिदानंद की भी एकता है। इसलिए कहा शिव एक, वो जो एक है ध्येय शिवंकर। जैसे ही उसका ज्ञान होता है वैसे ही कल्याण कर हो जाते हो, फिर तुमसे जो होगा वो कल्याण ही होगा, क्योंकि अकल्याण का कारण है द्वैत बुद्धि। तो जहां द्वैत बुद्धि होगी दूसरे का भाव होगा वहां अकल्याण होगा, जहां एक का भाव है वहां अकल्याण हो नहीं सकता। इसलिए कहा शिव एको ध्येय शिवंकर सर्वम अन्यत परित्यज्य। एकमात्र उस अद्वैत को पकड़ करके बाकी सब चीजों को छोड़ करके ये जो नित्य कल्याण है यही हमेशा करते रहना चाहिए। अब इस प्रकार से ओंकार का पूरा वर्णन करके अथर्ववेद समाप्त होता है। समाप्तार्थ शिखा तामधीत्य द्विजो गर्भवासाद् विमुक्तो मुच्यते, तामधीत्य द्विजो गर्भवासाद् विमुक्तो विमुच्यते इति ओम सत्यम इति उपनिषद। समाप्तार्थ शिखा, ये अथर्व शिखा समाप्त हुई, इसके साथ ही अथर्ववेद का जैसे पहले कहा था अंतिम हिस्सा है, इसको भली प्रकार से जान करके जो द्विज है, जिसने दूसरा जन्म प्राप्त किया है, पहले बतलाए हैं पहला जन्म माता पिता से हुआ, दूसरा जन्म गुरु से हुआ, वो इस ज्ञान को प्राप्त करके अथर्व शिखा का अध्ययन करके गर्भवासाद विमुक्त, गर्भवास से छूट जाता है। तो क्या पहले गर्भवास में था? तो कहा गर्भवासाद विमुक्तो मुच्यते। सचमुच में तो ये कभी भी गर्भवास में नहीं आया था, भ्रम से मान रहा था, वो भ्रम भी चला गया। कई जगह ऐसी चीज होती है जो भ्रम मात्र से होती है, भ्रम के हटते ही चली जाती है। अंत कहते हैं ओम सत्यम इति, बस ओम सत्य है, इस बात को हमेशा याद रखे, यही अंतिम तत्व है। बस भाई
सत्संगियों, नाद ब्रह्म ओंकार के विषय पर आपने विस्तार से परम पूज आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद गिरि महाराज जी के प्रवचन सुने हैं। प्रस्तुत कैसेट में एक अलग विषय है जो पुनर्जन्म से संबंधित है। इस बात में तो तनिक भी संदेह नहीं है कि सनातन धर्म पुनर्जन्म में पूर्ण विश्वास रखता है, क्योंकि जो बात अपने श्रीमुख से भगवान स्वयं कहते हैं उस बात से कौन है जो मुंह फेर लेगा। देखिए भगवद गीता के छठे अध्याय का 41वां श्लोक, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान शित्वा शाश्वती समहा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभी जायते। भाव है कि धर्म में आस्था रखने वाले किसी भी साधक का यदि साधना काल पूर्ण होने से पहले ही शरीर छूट जाता है तो ऐसे साधक के लिए केवल लक्ष्मी बानों के ही घर में जन्म लेना नहीं लिखा, बल्कि उसके लिए शुचि नाम शब्द पहले कहा है कि वह पवित्र तथा श्रीमानों की उच्च कुल में जन्म लेता है। आइए इस विषय पर पूज महाराज जी से विस्तार से चर्चा सुनेंगे कि शास्त्रीय तथा लौकिक दृष्टि में पुनर्जन्म क्या है।
केन अधिष्ठिताः सुखेतरेषु वर्तामहे, कौन हमारे ऊपर शासन करते हुए हमको सुख सुख से भिन्न दुख का भोग कराता है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुख का भोग करना चाहता नहीं। पाप के फल दुख को तो चाहते नहीं, परंतु पाप करने के नए नए उपाय ढूंढते रहते हैं। अनेक प्रकार के नए धंधे शुरू होते हैं जिनका काम पाप करना है। बुरा नहीं मानना कोई, कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा माना जाता है जो तुमको ज्यादा से ज्यादा चोरी करने का रास्ता बतावे? कौन सा वकील अच्छा माना जाता है जो तुम्हारे झूठे से झूठे मुकदमे को जिता देवे? इसलिए कहा, पापम कुर्वन्ति यत्नतः, प्रयत्न करके पाप करते। अब पाप का फल दुख है, उसको भोगना नहीं चाहते। न पाप फलम इच्छन्ति, अब पाप किया पाप के फल की इच्छा नहीं। पर केन अधिष्ठिताः सुखेतरेषु वर्तामहे, कौन हमको उधर लगा देता है? यह जो लगाने वाला है इसके स्वरूप को समझना जरूरी। संसार के अंदर चारों तरफ हम भिन्न भिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों वाले लोगों को देखते हैं। अनेक प्रवृत्तियां, अब इन अनेक प्रवृत्तियों का कोई न कोई कारण होना चाहिए। वो जैसा हमारे परम प्रिय मंडलेश्वर जी अभी आप लोगों को बतला रहे थे, पूर्व जन्म के संस्कारों से इस जन्म में भेद आता है। पहले के जो किए हुए संस्कार यहां उद्बुद्ध हुए उसके कारण यहां भेद नजर आता है। संसार में ऐसे भी मजहब और मत मतांतर हैं जो इस प्रकार से जीव को अनादि काल से अनंत शरीरों के द्वारा निकलने वाला नहीं मानते। वो कहते हैं मनुष्य का केवल एक ही जीवन है, इसके पहले भी कोई जीवन नहीं था, इसके आगे भी स्वर्ग या नरक में चला जाएगा, आगे भी इसको कोई दूसरा जीवन जीने का मौका नहीं मिलेगा। फिर संसार में इतना वैचित्र क्यों? तो एक ही कारण बतला पाते हैं, परमेश्वर की मर्जी। प्रश्न होता है परमेश्वर की मर्जी को यदि कारण मानते हैं तो परमेश्वर के अंदर वैषम्य और नैर्भिण्य का दोष आ जाएगा। परमेश्वर ने ये विषमता क्यों की? इतना ही नहीं, संसार को जब चारों तरफ देखते हैं तो दुख में पड़े हुए बहुत ज्यादा लोग दिखते हैं, सुख वाले थोड़े दिखते हैं। भारतवर्ष में खरबपति ज्यादा है कि खखपति ज्यादा है? कब जानते हो ना, जिसके पास खाली राख है और कुछ नहीं, जिसके पास कुछ नहीं है। अंग्रेजी में नाम रख दिया बिलो पॉवर्टी लाइन, वो सब खखपति हो गए। तो परमेश्वर ने यदि स्वतंत्र हो करके इस प्रकार का भेद बनाया और भेद भी ऐसा बनाया जिसमें अधिकतर लोग कष्ट में हैं, तब तो वह परमेश्वर महा अन्यायी और अत्याचारी माना जाएगा। जो ऐसा अत्याचारी होगा वो क्या पूजा के योग्य है, उपासना के योग्य है? अतः इस प्रकार की विचारधारा जो पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करती वो स्वयं परमेश्वर के विरोध में मनुष्य को खड़ा कर देती है। अतः शास्त्रकारों ने कहा कि परमात्मा कर्म फल देता जरूर है, अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे, परंतु कर्म जीव करता है तद अनुकूल ही उसको फल मिलता है। अतः आगे चल करके अति धन्य वेद कहता है, गुणान्वयो यः फलकर्म कर्ता। गुणों से युक्त हो करके फल के लिए कर्म करता है और कृतस्य तस्य च उपभोक्ता। और जो उसने किया कर्म है उसका वह भोग करता है, भुगवाता तो ईश्वर है परंतु अपने ही किए हुए फल को भोगता है। परंतु कब तक भोगता है? तो फल कर्म करता, जब तक फल के लिए कर्म करता है तब तक तो फल भोगता है, और जब फल के उद्देश्य से कर्म करना छोड़ देता है तो उसके भोग से बच जाता है। अब एक बात याद रखना, पाप हमेशा फल के लिए किया जाता है, कभी भी पाप बिना फल के उद्देश्य के नहीं किया जाता। मोटी भाषा में, कोई आदमी झूठ तभी बोलेगा जब किसी फल को चाहे। किसी से पूछो कितने बजे हैं, घड़ी देखेगा झट कहेगा 8:14 हुए हैं। परंतु यदि उसने तुमसे कहा था मैं 8 बजे आऊंगा, तो ईमानदार व्यक्ति भी 8:14 को 8:10 तो बना ही देगा। 8:10 हुए हैं भाई, क्यों 4 मिनट को गायब कर दिया? सामने वाला कहेगा 15 मिनट देरी से आया, नहीं तो 10 मिनट में काम चलेगा। जूते की दुकान वाले जब दाम लगाते हैं ना, तो दाम लिखते हैं 7 रुपया 99 पैसे। आदमी को ये भ्रम रहे कि 7 रुपए से कुछ ऊपर है, ऐसा भ्रम न हो जाए कि 8 रुपए है। इसी प्रकार से 8:14 की जगह 8:10 कर देगा। जहां कहीं मनुष्य पाप करता है वहां का जरूर उसके सामने कोई फल है तब करता है। अतः जब फल के लिए कर्म करना छोड़ देगा तो पाप कर्म तो करेगा ही नहीं। और पुण्य कर्म का फल उसको इसलिए नहीं मिलेगा कि वो फल चाहता नहीं। पुण्य कर्म करने से उसका जो मन है वो शुद्ध होता चला जाएगा। अब फल कर्म करता क्यों होता है? तो कहा गुणान्वय। जब सत्व गुण प्रधान होता है और थोड़ा रजोगुण होता, तब आदमी ऐसे कर्म करता है कि वह स्वर्ग आदि शुभ लोकों को ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक गोलोक पर्यंत जावे। जितना जितना सत्वगुण ज्यादा होगा उतना ही उतना उत्तम उत्तम लोकों को प्राप्त करेगा। पता कैसे लगे? तो शास्त्रकारों ने बतलाया है, मनुष्य को मरने के पहले जहां उसको आगे जाना है उसके स्वप्न आने लग जाते हैं। बचपन के स्वप्न तो पूर्व जन्म से संबंधित ज्यादा होते हैं। जवानी के स्वप्न इस संसार से, इहलोक में इस शरीर से संबंधित ज्यादा होते हैं। और जितना जितना बुढ़ापा आने लगता है, उतना उतना जहां जाना है वहां के सपने प्रधान होने लगते हैं। उपनिषदों में बताया है कि जैसे जोंक जो होती है लीच, वो अपने मुंह को उठा करके अगले घास के तिनके को देखती है। जब अगले घास के तिनके पर उसका वह मुंह अच्छी तरह से स्थिर हो जाता है, तब पिछला वाला मुंह उठा लेती है। जोंक के चलने का एक घास के तिनके से या एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर जाने का यही तरीका है। पहले अगला पैर जमाती है, तब पिछला पैर उठाती है। इसी प्रकार जीव जहां को जाना है उस स्थल को पहले निश्चित कर लेता है, तब यहां से छोड़ता है। जैसे जोंक इधर उधर मुंह उस घास के तिनके के चारों तरफ घुमाती है जमाने के पहले, उसी प्रकार जीव अगले जन्म के बारे में स्वप्न के अंदर तरह तरह की कल्पनाएं करने के बाद तब उसमें स्थिर होता है। इसलिए वो स्वप्न की सी अवस्था आगे आने वाली जहां जमाना है वहां सामने आती रहती है। अब यदि सत्वगुण अधिक है, जितना जितना अधिक होगा उतना ही उतना तद अनुकूल ही उसके सारे कार्य होंगे। अगर रजोगुण प्रधान है और सत्वगुण थोड़ा है, तो फिर इस मनुष्य लोक में ही आ जाता है। किसी दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। अब ये जो मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, ये पुनर्जन्म को शास्त्र के द्वारा सिद्ध होते हुए भी यहां भी सिद्ध कर देता है। अगर सब लोग मर के स्वर्ग को ही चले जाते तो उनसे हमारा किसी प्रकार से संपर्क हो नहीं सकता। परंतु बहुत से लोग रजोगुण की प्रधानता और सत्वगुण का उसके अंदर अंश मौजूद होने के कारण यही पैदा होते हैं। ऐसे लोगों को अपने जन्मों का स्मरण भी रहता है। बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई है जिसके अंदर मनुष्य को अपने जीवन की पूर्व जन्म की स्मृति रही है। सब तरह से उसका परीक्षण करके देखा गया और वो चीज बिल्कुल ठीक पाई गई। एक बार एक जगह पर 3 साल का बच्चा था। एक दिन वहां पर देखा गया, पुराने जमाने में घर में स्लेटे होती थी, आजकल का बॉल पॉइंट पेन समझ लो, तो स्लेट के ऊपर अंग्रेजी में एक वाक्य लिखा हुआ है।